وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصدني في مشيك واقصد من صوتك إن أنكر الصوت لصوت الحمير
ترجمة اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ پروردگار کا شکریہ ادا کرو اور جو بھی شکریہ ادا کرتا ہے وہ اپنے فائدے ہی کے لیے کرتا ہے اور جو کفران نعمت کرتا ہے اسے معلوم رہے کہ خدا بے نیاز ہی ہے اور قابل حمد و ثنا بھی ہے اور اس وقت یاد کرو جب لقمان نے اپنے فضل کو نصیحت کرتے ہوئے کہا بیٹا خبردار کسی کو خدا کا شریک نہ بنانا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے بارے میں نصیحت کی ہے پھر یہ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ سہ کر اسے پیٹ پر رکھا ہے اور اس کی دودھ بڑھائی میں 2 سال میں ہوئی ہے کہ میرا اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو تم سب کی بازش میری ہی طرف ہے اور اگر تمہارے ماں باپ اس بات پر زور دیں کہ کسی ایسی چیز کو میرا شریک بناؤ جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو خبردار ان کی اطاعت نہ کرنا لیکن دنیا میں ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا اور اس کے راستے کو اختیار کرنا جو میری طرف متوجہ ہو پھر اس کے بعد تم سب کی بازش میری ہی طرف ہے اور اس وقت میں بتاؤں گا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے بیٹا نیکی یا بدی ایک رائے کے دیانے کے برابر ہو اور کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمان پر ہو یا زمین کی گہرائیوں میں ہو تو خدا روز قیامت ضرور اسے سامنے لائے گا وہ لطیف بھی ہے اور باخبر بھی ہے بیٹا نماز قائم کرو نیکیوں کا حکم دو برائیوں سے منع کرو اور اس راہ میں جو مصیبت پڑے اس پر صبر کرو یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے اور خبردار لوگوں کے سامنے اکڑ کر منہ نہ پھلا لینا اور زمین میں غرور کے ساتھ نہ چلنا کہ خدا اکڑنے والے اور مغرور کو پسند نہیں کرتا ہے اور اپنی رفتار میں میانہ روی سے کام لینا اور اپنی آواز کو دھیما رکھنا کہ سب سے بدتر آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے جو بلا سبب بھونے آواز سے چیختا رہتا ہے صدق اللہ العلی العظیم اور محمد و آل محمد صلوات.
جزاکم اللہ برادر. آگے مشتبہ حسن آپ تشریف رکھتے ہیں برج پہ.
جی آگا
عالمین آغازان آپ کا بہت بہت شکریہ برادران. اس وقت ہمارے ساتھ برج پہ تشریف رکھتے ہیں مولانا سید حسن مشتبہ رضوی آغازان کا تعلق بیسیکلی کینیڈا سے ہے اور آغازان کچھ پروگرامز کنڈکٹ کرنے کے لیے اس وقت ٹیکسس میں تشریف رکھتے ہیں. تو آغازان آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ اس بزی ویکینڈ پر آپ کے یہاں تشریف لائے اور اس میں ہمارے پروگرام کے لیے بھی آپ نے وقت ڈیڈیکیٹ کیا. اس کے لیے بہت بہت آپ کے شکر گزار ہیں. اب ہم آپ سے التماس کریں گے پلیز اپنے لیکچر کا آغاز کیجیے گا اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے اسلام فوبیا کیا ہے یا اسلام فوبیا کی تعریف. اور بعد میں آپ سے التماس کروں گا پلیز اپنے آپ فونس کو میوٹ کیجیے گا اور انشاءاللہ آگے جان کے لیکچر کے اختتام پر انشاءاللہ پھر ہم سوال و جواب سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ. ایک بار محمد والے محمد صلوات.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رحمة العالمين بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جب سے انسان اس دنیا کے اندر ہے اس کی طبیعت کے اندر یہ ایک حیوانی طبیعت کے اندر ایک چیز ہے جس کی بنا پہ اس نے یہ اپنی پوری کوشش کی ہے وہ باقی کے انسانوں کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول رکھے، ان کو اپنا غلام بنائے، ان کو اپنا ماتحت بنائے، ان کو تذویر کرے، اور جو اس کی ول ہے یا اس کی جو ارادہ ہے اس کے اوپر باقی کے انسان جو ہیں وہ سبمٹ ہو جائیں، اپنے سر کو خم کر دیں، اور جو وہ چاہتا ہے جس طرح سے چاہتا ہے لوگ اس طرح سے سوچیں، لوگ اس طرح سے کام کریں، اور اس کی حکومت ہو ہر ایک انسان کے اوپر جو اس دنیا کے اندر ہے، یعنی کچھ ملکوں کے اوپر حکومت کر کے انسان کے نفس کے اندر جو طبیعت ہے وہ مطمئن یا کنٹینٹ نہیں ہوتی، بس چاہتی ہے کہ وہ پوری کی پوری دنیا کے اوپر حکومت کرے. تو یہ حکومت کے حوالے سے یا کنٹرول کے حوالے سے یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کی طبیعت کے اندر بھی ہے اور انسان کی فطرت کے اندر بھی ہے، کیونکہ خدا نے انسان کو خلق کیا دو بود ہیں یا اس کے دو میل ہیں، ایک اس کا میل حیوانیت کی طرف لے کے جاتا ہے اس کو، اور دوسرا میل اسے خدا کی طرف لے کے جاتا ہے. تو جو میل خدا کی طرف لے کے جاتا ہے اس کو فطرت کہتے ہیں، اور جو میل اسے حیوانیت کی طرف لے کے جاتا ہے اس کو طبیعت کہتے ہیں. تو کیونکہ انسان کے یہ دو بود ہیں یا یہ دو انکلینیشنز ہیں، دو میل ہیں، اس کی وجہ سے انسان کے اندر بھی ایک جدال چل رہی ہے، ایک جنگ چل رہی ہے، اور اسی جنگ کا بروز یا وہی جنگ جو ہے جب باہر آتی ہے تو وہ مختلف انداز میں، کبھی ورلڈ وار ٹو کے نام سے، ورلڈ وار ون کے نام سے، کبھی ویتنام کے نام میں، کبھی عراق کے اندر، کبھی آپ کو فلسطین کے اندر، کبھی مختلف جگہوں پہ افغانستان کے اندر، اس کا آپ کو تاریخ میں جو ہے وہ نظر آئے گا، اور آج کل کے زمانے میں بھی آپ اس چیز کو جو ہے وہ ملاحظہ کر رہے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر اپنی طبیعت کے میل کی طرف جائے گا تو وہ حیوانیت کی طرف جا رہے ہیں، اگر وہ اپنی فطرت کی میل کی طرف جائے گا تو وہ خدا کی طرف جا رہے ہیں. اب جو آج کا ٹاپک جس کے اوپر ہم بات کریں گے وہ اسلاموفوبیا، ڈیفینیشن آف اسلاموفوبیا. اگر آپ ڈیفینیشن کے حوالے سے اسی صرف بغیر اس کے ڈکشنری کو دیکھے اور خود ہی اس کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا تفکر کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اسلام کی جو تعریف جنرلی ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے وہ جو یہاں پہ بھی کہی جاتی ہے کہ اسلام مینز پیس یا اسلام مینز سبمیشن. تو اگر ان دونوں لفظوں کو ہم دیکھیں اور ساتھ ان کے فوبیا کا بھی ترجمہ کریں کہ فوبیا یعنی فیئر یعنی خوف، تو یہ خود ایک ریشنل سی جو ہے غیر منطقی چیز بنتی ہے کہ آپ کہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ پیس سے خوف رکھتا ہے یا کوئی شخص جو ہے سبمیشن سے خوف رکھتا ہے. یعنی یہ عقل جو ہے اس بات کے اس حوالے سے کہے گی کہ یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ انسان کو جو ہے وہ پیس سے محبت ہونی چاہیے یا پیس کی طرف اسے مائل ہونا چاہیے، اور جو سبمیشن ہوتی ہے ایک سبمیسو بندے سے جو ہے وہ ڈرنا کوئی وہ عاقلانہ بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ فوبیا کے حوالے سے اگر فوبیا ہی کو دیکھیں تو آپ کے ذہن میں بہت سارے اور چیزیں بھی آتی ہیں، جیسے ٹیکنوفوبیا ہے یا ایسٹروفوبیا ہے یا بہت سارے، ایک لمبی لسٹ ہے فوبیا کی جو کہ اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو آپ کو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یعنی ہنڈریڈس آف فوبیاز جو ہیں وہ ڈیفائن کیے گئے ہیں، اور ان کو ڈیفائن کرنے کی اس طرح سے وہ کیے گئے ہیں کہ جو لوگ ہیں جب لوگوں سے یہ ڈیفائن، مثلا اگر 10 بندے یا 15 بندے یا 100 بندہ یا 1000 بندہ ہے وہ دھاگوں سے ڈرتا ہے، تو اگر دھاگوں سے ڈرتا ہے تو اس کو انہوں نے یعنی یہ جو سائیکائٹری کے اندر یا سائیکالوجی کے اندر اس کو ایک فوبیا کے نام قرار دیا. یا اگر کوئی شخص ہے وہ یہاں پہ مثلا میں لسٹ دیکھ رہا تھا، کافی لمبی لسٹ ہے، اس کے اندر حتیٰ مثلا وہ چیزیں جس سے کہ انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے ان چیزوں کا نام بھی ہے اس کے اندر. یعنی ہوا سے لوگ ڈرتے ہیں، آکسیجن سے ڈرتے ہیں، وہ گھوڑوں سے ڈرتے ہیں، مثلا دھاگے سے ڈرتے ہیں، ایسی چیزیں جس کا کہ عقل کہتی ہے کہ ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو فوبیا جو ڈیفائن کیے جاتے ہیں وہ کچھ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے, خواہ وہ ڈر صحیح ہو یا غلط ہو, اس کا نام فوبیا رکھ دیا جاتا ہے, اور ایک لمبی لسٹ ہے جس کے اندر اس کو شمار کیا جاتا ہے. ضروری نہیں کہ ہر انسان مثلا اریکنو فوبیا ہے جو کہ ہر انسان جو ہے وہ اسپائڈر سے ڈرتا, ہر انسان اسپائڈر سے نہیں ڈرتا, کچھ انسان اسپائڈر سے ڈرتے ہیں. تو جو انسان اسپائڈر سے ڈرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ اریکنو فوبیا, اور یہ ایک ڈیزیز ہے, یعنی یہ سائیکولوجی کے اندر یہ ایک ڈیزیز کا نام ہے. سو اٹس ایکچولی ناٹ سم تھنگ which is, you know, if a person says that I'm claustrophobic or I have arachnophobia, this person is looked upon as a person who has a psychological disorder. Uski taraf is tarah se nigah nahi karte ki ye shakhs jo ye phobia le ye sahi hai, balki uski taraf nigah karte hain ki ye mareez hai, isko jo hai wo ek doctor ke paas, ek psychiatrist ke paas jana chahiye aur is phobia ko apne andar se nikal dena chahiye. To جب آپ اسلامو فوبیا کو دیکھتے ہیں تو جو ہمارے ذہنوں کے اندر آلریڈی ڈیفینیشن ان دونوں لفظوں کے حوالے سے ہیں, تو یہ میک سینس نہیں کرتا کہ کوئی شخص بھی جو ہے وہ پیس سے ڈرے یا کوئی شخص بھی جو ہے وہ سبمیشن سے ڈرے. لیکن فوبیا جس بندے کو ہو جاتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہ ریشنل طریقے سے ہوں گے یا ریشنلٹی اس کے پیچھے ہے, بلکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو کچھ قوا دی ہیں, کچھ چیزیں دی ہیں, یعنی ٹولز دیے. تو اس علم کو حاصل کرنے کے ٹولز کے اندر عقل نظری ہے, حواس خمسہ ہے, خیال ہے اور وہم ہے. یعنی حواس خمسہ کا تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے فائیو سینسز, عقل نظری یعنی وہ انسان کی قوت جو اسے سمجھاتی ہے کہ مثلا اگر دو, ٹو پلس ٹو از فور, یعنی سمجھنے کی طاقت کو آپ کہہ لیں کہ عقل نظری کہتے ہیں, اور حواس خمسہ کو فائیو سینسز, اور اس کے علاوہ خیال, خیال یعنی آپ کی جو امیجنیشن کہہ لیں یا وہ جو خطور یا جو ذہن کے اندر انسان کی سوچیں آتی ہیں اس کو آپ خیال کہہ سکتے ہیں. خیال خیل سے ہے, خیل کہتے ہیں گھوڑے کو, اس وجہ سے جو سوچیں ہوتی ہیں بہت تیزی سے آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ٹول دیا ہے اس کو کہتے ہیں وہم. وہم جو ہے وہ انسان کے ایموشنز کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اس طرح سے نہیں کہ جس طرح سے ہم وہم کو سمجھتے ہیں کہ مثلا یہ بندہ ہے, یہ وہمی بندہ ہے, یعنی یہ پیرانوئڈ ہے, اس حوالے سے نہیں. وہم وہ قوت ہے خدا نے جو انسان کو دی ہے جس سے وہ ایموشنز کو درک کر پاتا ہے. اگر آپ کو مثلا مثال دیں کہ جس طرح سے پیار ہے, محبت ہے, نفرت ہے, خوف ہے, یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ سیکھنے کے لیے یا ان ایموشنز کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے یا ان ایموشنز کو فیل کرنے کے لیے جو قوت خدا نے ہمیں دی ہے وہ وہم کے نام سے. اب یہ جو وہم ہے یہ آؤٹ آف کنٹرول بھی جا سکتا ہے, یعنی یہ ان چیزوں سے ڈر سکتا ہے کہ جن چیزوں سے عقل نظری جو ہے وہ کہتی ہے کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی اس کا عقل نظری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جو میت ہے, جب انسان مر جاتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ میت سے ڈرتے ہیں, عقل نظری ان کی یہ کہہ رہی ہوتی ہے جو خدا نے ان کو علم حاصل کرنے کی قوت دی ہے کہ اس سے آپ کو ڈرنے نہیں ہے. اگر آپ نے اس سے ڈرنا تھا تو ڈرتے تب جب یہ زندہ تھا, جب زندہ تھا تو آپ کو کچھ بھی سکتا ہے, زبان سے آپ کو چوٹ پہنچا سکتا ہے, ہاتھ سے پہنچا سکتا ہے, لیکن اب جو یہ مر گیا ہے, اس دنیا سے چلا گیا ہے جس کا کہ جسم حرکت نہیں کر رہا, تو اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر وہم انسان کا جو ہے وہ عقل نظری کے ماتحت نہ ہو, اگر اس کے ماتحت نہ ہو, یعنی عقل نظری اس کے اوپر رول نہ کر رہی ہو, عقل نظری کی بات کو وہ نہ مانتا ہو, تو پھر وہم کے اندر جو ایموشنز آئیں گے اس کا منطق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا, تو پھر انسان جو ہے وہ میت سے جو ہے وہ ڈرے گا. تو اس یہ فوبیا کا جو تعلق ہے, یعنی ایک تو ہم نے آپ کو جو ایکسپلینیشن دی وہ یہ کہ ایک یہ مرض ہے جو کہ سائیکالوجی کے اندر جو ہے اس کو ایک ٹریٹمنٹ کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ ایک بیماری ہے, اور اس بیماری کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کا وہم آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے, عقل نظری ہاتھ میں نہیں رہتا, انٹلیکٹ کے ہاتھ میں نہیں رہتا, تو وہ پھر ہر چیز سے, جس چیز کو چاہے اس سے وہ ڈر سکتا ہے, بشک کہ وہ چیز ڈرنے والی نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے ڈرتے ہیں, جس کے اندر ڈرنے کی کوئی منطقی ریزن نہیں ہے. تو یہ ایکسپلینیشن تھی کہ آپ
जी हेलो अगर जान, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो अगर जान, हाँ ब्रदर मैं चेक करता हूँ, शायद अगर जान के शायद फोन में शायद की प्रॉब्लम ना हुआ हो। अगर आपको आवाज़ आ रही है हमारी?
जी जी मुझे आवाज़ आ रही है।
जी ब्रदर हम इसकी मदद खाएं, अगर जान की कॉल समहाउ डिस्कनेक्ट हो गई, अगर जान वापस तो अगर प्लीज़ शुरू कीजिएगा।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक मेरे ख्याल से बात पहुँची थी वो ये था कि एक तो हमें इस बात को समझना है कि फोबिया जो है वो एक बीमारी है, और ये बीमारी जो है वो इंसान के नफ्स के अंदर से निकलती है, और इसके निकलने का रीज़न यह है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने जो कुव्वतें इंसान को दी हैं इल्म हासिल करने के लिए, जब उनको वो कुव्वतें अकल नज़री के मातहत नहीं होती तो फिर वो कुव्वतें आउट ऑफ बैलेंस हो जाती हैं, और उनका कोई मंतिक या रैशनल के साथ जो है वो ताल्लुक नहीं रहता। तो किसी भी कल्चर और सोसाइटी के अंदर फोबिया जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है कि आपकी जहानबीनी के अंदर, कि जिस तरह से आप दुनिया को देखते हैं उसके अंदर फोबिया की कोई जगह हो। किसी भी कल्चर और सोसाइटी के अंदर फोबिया को हमेशा देखा इसी तरह से जाता है कि ये एक बीमारी है, और इस बीमारी का जो है वो आपको इलाज करवाना चाहिए। लेकिन 1980s और 90s के शुरू या उसके हत्ता एंड तक भी इस टर्म को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, और ये टर्म इंट्रोड्यूस उस वक्त इस वजह से हुई थी कि जो लोग जो हैं वो माइग्रेट हुए मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, और लोगों को एक किस्म का डर आया कि ये आ गए हैं हमारे मुल्क में और इन्होंने हमारे जॉब्स जो हैं वो ले लिए, अब हमारे पास जो है वो जॉब्स नहीं रहेंगे। अब ये जो फोबिया था कि जॉब उनका छूट जाएगा, उसके अंदर और भी डिफरेंट कल्चर्स के लोग थे, ना कि सिर्फ मुसलमान थे, लेकिन मुसलमानों की माइग्रेशन जो है वो बनिस्बतन अगर दूसरे कल्चर्स या दूसरी एथनिसिटीज के हवाले से देखा जाए तो वो ज़्यादा है, या जो हमारे हमारी फैमिलीज जो हैं वो बड़ी होती हैं, यानी हमारी तादाद जो है वो ज़्यादा होती है। तो ये इस्लामोफोबिया उस वक्त तक सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों के हवाले से देखा जाता था, लेकिन ये 9/11 के बाद इस्लामोफोबिया का एक नया जो है वो रुख आया कि जो इस मुसलमान हैं वो टेररिस्ट हैं, वो ये यानी ये कर देंगे, वो इंसानियत से मोहब्बत नहीं रखते, वो जो है वो सब वेस्ट को और सारे लोग जो वेस्ट के अंदर रहते हैं उनसे उनको नफरत है, उन्हें एक इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, और वो यहाँ के कल्चर से जो है वो जेलस हैं कि यहाँ पे सब चीज़ें पाई जाती हैं, मसलन सकाफत है और टेक्नोलॉजी है और सिविलाइजेशन है और ये सब चीज़ें हैं, और उनके पास क्योंकि ये नहीं है तो ये हसद करते हैं। तो इन चीज़ों को जब 9/11 के बाद बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट किया गया और लोगों के अंदर इस्लामोफोबिया जो 1980s या 1990s के अंदर था उसकी शक्ल जो है वो मुख्तलिफ बन गई। अब यहाँ पे जो डर فالس ایویڈنس اپیئرنگ ریئل، جو کہ فیئر کا ایک بزنس کے اندر بھی اور سائیکالوجی کے اندر بھی جو ہے اس کی ڈیفینیشن دیتے ہیں کہ ایف اسٹینڈس فار فالس، ای اسٹینڈس فار اپیئرنگ، ای اسٹینڈس فار ایویڈنس، اے اسٹینڈس فار اپیئرنگ، آر اسٹینڈس فار ریئل. تو فیئر کی جو ڈیفینیشن دی جاتی ہے وہ یہ کہ بھائی جو جس چیز سے آپ ڈرتے ہیں وہ ایک فالس ایویڈنس ہے، وہ ایک سراب ہے، وہ ایکچولی ایگزسٹ نہیں کرتا اور آپ اس سے جو ہیں وہ ڈرتے ہیں. تو ہر قسم کا جو فوبیا یا فیئر انسان کے ذہن کے اندر ہوتا ہے اس کی یا اس کی بیسس جو ہے وہ کسی نہ کسی ایسے ایویڈنس ہیں جو اس کو اپنی جہان بینی میں، اپنی پرسیپشن میں ریئل لگتی ہے. اور ضروری نہیں کہ اس کا تعلق کسی منطق کے ساتھ ہو یا لاجک کے ساتھ ہو. اب لیکن اسلاموفوبیا کو اب اس نگاہ میں لے کر آئے کہ یہ لوگ حقیقت میں آپ کے جابز کے پیچھے نہیں ہیں بلکہ یہ آپ کی جان کے پیچھے. تو اور اس کے اندر بھی کہ بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے، مثلا اگر آپ کرسچن ہیں، گاڈ فیئرنگ ہیں، آپ جو ہیں وہ اچھے ہیں، اپنا جھوٹ نہیں بولتے، اخلاق آپ کا اچھا، آپ ایک اچھے انسان ہیں، انسانیت کے لیے درد رکھتے ہیں، یا آپ کو پھر بھی ہیٹ کرتے ہیں، یعنی اگر آپ ان کا بھلا بھی چاہتے ہیں، ان کے مالک میں جا کے لوگوں غریبوں کی مدد بھی کرنا چاہتے ہیں، سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، یہ پھر بھی آپ سے ڈرتے ہیں، یعنی یہ پھر بھی آپ جو ہیں وہ نقصان پہنچائیں گے. تو 9/11 کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اسلاموفوبیا کی جو ٹرمینالوجی ہے اور یہ فوبیا جو ہے وہ بڑھنے لگا. جیسے عرض کیا کہ فوبیا ہر ایک انسان کو نہیں ہوتا ہر ایک چیز کے ساتھ، بلکہ ایک کوانٹٹی ہوتی ہے، ایک مقدار ہوتی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ پایا جاتا ہے. اور لیکن اب اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ سب سے، یعنی اگر کہا جائے کہ اریکنوفوبیا، کلیسٹروفوبیا، یعنی اس کی اگر پرسنٹیج دیکھی جائے کہ کتنے لوگوں میں یہ فوبیاز مختلف قسم کے، جو 100 سے زیادہ کی لسٹ ہیں، یعنی اگر آپ اس کو دیکھیں تو اے بی سی جتنے الفابیٹس ہیں اور ہر الفابیٹ کے نام سے ایک ایک فوبیا جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور 15, 20, 25, 30 ایک الفابیٹ کے نام سے جو ہے وہ فوبیاز رکھے گئے ہیں، نام اس کے رکھے گئے ہیں کہ جو لوگوں سے سروے کر کے پوچھ کے یا جو سائیکائٹرسٹ سے جنہوں نے رجوع کیا کہ ہم ان چیزوں سے ڈرتے ہیں. تو سینکڑوں قسم کے جو ہیں وہ مختلف فوبیاز ہیں. لیکن اگر آپ اسلامو فوبیا کے حوالے سے دیکھیں تو جو پرسنٹیج لوگوں کی یہ فوبیا رکھتے ہیں وہ ہو سکتا ہے باقی سے تمام کے تمام فوبیا سے ہائی ہوں. یعنی اگر مثال دی جائے کہ اریکنوفوبیا جو ہے وہ 5% آف دا پاپولیشن آف دا فار ایگزامپل یو ایس اے کے اندر پایا جاتا ہے، یا 10% جو ہے وہ کینیڈا کے اندر پایا جاتا ہے. لیکن اگر آپ اسلاموفوبیا کے حوالے سے دیکھیں گے پرسنٹیج تو وہ ایک بہت بڑا نمبر ہوگا. تو یہ نمبر جو ہے یہ گرو بھی کر رہا ہے اور یہ گرو بھی کرے گا. اور اس کے علاوہ تو اس طرح سے پروپوگیٹ کیا گیا کہ حتیٰ مسلمان مسلمان سے ڈر رہا ہے، یعنی حتیٰ مسلمان اسلام سے ڈر رہا ہے کہ وہ ایک جو خوف ڈال دیا گیا ہے اسلام کے حوالے سے کہ جو یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ لوگ جو ہیں وہ اسلام کا نظام چاہتے ہیں، یہ اسلام اور پالیٹکس کو ایک سمجھتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں وہ کسی کا خیال نہیں رکھتے. تو مسلمان دوسرے مسلمان سے ڈر رہا ہے. یعنی آپ جو اگر بات کریں کہ اسلام و سیاست ایک ہے، آپ بات کریں کہ ایک جہانی حکومت ہونی چاہیے، آپ بات کریں کہ جو تاغوت ہے آج کا، جو اپریسرز ہیں، جو لوگ اس دنیا کے اوپر انہی اصولوں کے اوپر چل رہے ہیں جن اصولوں پہ فرعون چلا تھا، نمرود چلا تھا، کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو کہ باقی کی تمام کی تمام دنیا کو اپنے قبضے میں لانا چاہ رہے ہیں، کنٹرول میں لانا چاہ رہے ہیں، یہ انسنٹ لوگوں کا خون بہاتے ہیں اور خون بہا کر اس کی جو ہے وہ اس کو یہ رزلٹ دیتے ہیں کہ ہم نے جو خون بہایا وہ انوسنٹ نہیں تھے، اس کے اندر بچے ہوں، عورتیں ہوں، بوڑھے ہوں، جو بھی ہوں. اگر آپ اس طرح سے بات کرتے ہیں تو جو اسلاموفوبیا کو پروپوگیٹ کر کے ایک اس کی امیج بنا دیا گیا ہے، تب مسلمان مسلمان سے ڈرنے لگ جاتا ہے. تو اس کا جو پرپز ہے، یعنی اریکنوفوبیا کو پروپوگیٹ نہیں کیا جاتا، ہائٹس کے فوبیا کو پروپوگیٹ نہیں کیا جاتا، باقی جتنے ہنڈریڈز آف فوبیاز ہیں ان میں سے کسی کو میڈیا پروپوگیٹ نہیں کرتا. ہر روز یعنی آپ کو میڈیا کے اندر اس فوبیا کے حوالے سے بات نہیں ہوتی ہوئی سنائی دے گی، بلکہ اگر بات ہوگی تو وہ سائیکالوجی کا اگر کوئی پروگرام ہے، ڈسکوری کا پروگرام ہے، اس کے اندر بات ہو رہی ہے. آپ کو مین اسٹریم میڈیا کے اوپر یہ بات نظر نہیں آئے گی. ہاں اس کے اوپر آپ کو ہالی ووڈ میں جو ہے وہ موویز نظر آ جائیں گی، लेकिन मेन स्ट्रीम के अंदर आपको इस तरह की जो चीज है वो नजर नहीं आई, इस वजह से कि बाकी के फोबियाज में इंटरेस्ट नहीं है उन लोगों का जो कि इस्लामोफोबिया का नाम जिसने जिन्होंने बनाया है और जो चाहते हैं कि लोग इस्लाम से फोबिया रखें या डरे। उनका इंटरेस्ट इसमें है कि इस्लामोफोबिया बढ़े। पहले उन्होंने कहा कि हम तो जी हमारा तो इस्लाम के साथ कोई काम नहीं है, हम तो सिर्फ मुसलमान हैं, कुछ जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और वो इन चीजों को कर रहे हैं और बाकी के मुसलमानों का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप देखें तो उन्होंने शुरू में यही कहा, लेकिन अभी अगर आप थोड़ी रिसर्च करें तो आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं वो इस बात को अपने लेक्चर्स के अंदर और ट्रेनिंग के अंदर लोगों को ये बता रहे हैं कि हमने ये जो एंगल पकड़ा कि कुछ मुसलमान, ये गलत एंगल है। असल में अगर आप इस एंगल को पकड़ रहे हैं तो आप वो मकसद जो हम हासिल करना चाह रहे हैं वो मकसद आप उससे हासिल नहीं कर सकते, आपको इस्लाम के पीछे जाना पड़ेगा, आपको इस्लाम के पीछे जाना पड़ेगा, उसके फंडामेंटल्स को और क्लैरिट्स को, यानी इन दो को आपको टारगेट करना पड़ेगा कि आप इस्लाम के फंडामेंटल्स को, जिस तरह से मसलन हमारे इस्लाम के अंदर एक सेल्फ डिफेंस का कॉन्सेप्ट है, हमारे इस्लाम के अंदर एक स्ट्रगल का कॉन्सेप्ट है, उसको आप टैकल करें। आप इस्लाम और सियासत यानी एक है या दो है उसको टैकल करें, आप इस्लाम के जो बुनियादी असूल हैं उनको टैकल करें। आप उनको जब टैकल करेंगे तो आपके पास जो फोबिया आएगा यानी इस टैकल करने से ज्यादा लोग इसकी तरफ आएंगे, क्योंकि जो आपने पहले बात की कि जी कुछ मुसलमान है तो वो कहेंगे ठीक है हमें तो फिर कुछ मुसलमानों से डरना चाहिए, हमें हर मुसलमान से नहीं डरना चाहिए। तो उसके अंदर अकल नजरी बहुत सारे लोगों को इस फोबिया से बचा देगी, लेकिन अगर उसके फंडामेंटल्स की तरफ जाएंगे और उसको प्रोपगेट करेंगे मीडिया के अंदर के इस्लाम जो है वो माजल्ला एक कल्ट है, जब इस्लाम को आप एक कल्ट का नाम देंगे कि एक रिलीजन नहीं है। पहले आपने कहा कि इस्लाम एक मोनोथियस्टिक रिलीजन है, रिलीजन ऑफ पीस है या रिलीजन ऑफ सबमिशन है, जो कि इब्राहिम गॉड और इन इसके अंदर जो है वो बिलीव रखता है, ये एक सिलसिला एक कड़ी है मोनोथियस्टिक रिलीजन के अंदर आप खड़ा कर रहे हैं, तो कोई उससे डरेगा नहीं। तो अगर आपने इस लोगों को डराना है इस्लाम से तो आपको उसके फंडामेंटल्स को जो है वो फोकस करना पड़ेगा और उसको टारगेट करना पड़ेगा। तो जब आप ये कहेंगे कि इस्लाम में तो ये है कि जे जो जो औरत है जब हिजाब पहनती है तो वो एक उसके ऊपर अप्रेशन है, यानी वो एक अप्रेस्ड वुमेन है, उसके पास फ्रीडम नहीं है, या अगर एक शख्स है वो अपनी दाढ़ी रखता है तो ये एक अप्रेस्ड शख्स है, इसके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर आप इस तरह से इस्लाम के यानी इस तरह से लोगों को प्रोपोगेट करेंगे चीज तो लोग इस्लाम से डरने लगेंगे। अभी तक इस्लामोफोबिया में उन्होंने कहा कि हम इस्लाम से नहीं बल्कि हमारा प्रॉब्लम जो है वो लोगों के साथ है। अब जो है इस एंगल को बदल दिया गया है और फिर उन लोगों के हवाले से जो क्लैरिक्स यानी वो हमारे जो उलमा हैं जो कि ये बात करते हैं कि भाई इस जुल्म के खिलाफ आप आवाज उठाएं, अगर जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे हो रहा है, किसी भी इंसान पे हो रहा है, किसी भी खत्ते में हो रहा है, सोमालिया में हो रहा है, अफ्रीका किसी भी जगह पे हो रहा है, आप उसके खिलाफ आवाज उठाएं, आप मुस्तज़फीन की मदद करें, आप अप्रेस लोगों की मदद करें, आप अपने प्रिंसिपल्स पे खड़े हो, आप अपने फंडामेंटल्स पे खड़े हो, तो वो उनको भी टारगेट किया जाए, उनको बताया जाए कि ये वो मॉन्स्टर हैं जिनसे कि आपको डरना चाहिए। और इस काम को उन्होंने पहले भी तारीख में करके देखा है। जनाब देखें कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह उनको एज अ क्लैरिक, एज अ रिलीजियस स्कॉलर, एज अ रिलीजियस लीडर, उनकी हवाले से जिस उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से जिस तरह से प्रोपोगंडा किया गया, तो एक 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 शख्स जो कि 70 साल का बूढ़ा, उससे दुनिया जो है वो डरे, जिसके जो के जिसका के मैसेज किसी को नहीं पता कि वो क्या कह रहा है, जो कि कह रहा है कि मुस्तज़फीन जहां पे भी हों उनकी आप मदद करें, जो अगर पोप का डेलीगेट आ रहा है तो उसको पहले वो टाइम दे रहा है बाकी लोगों से, जो क्रिसमस के दिन जो है वो लोगों को फूल भेजवा रहा है उनके घरों में, जिसके वो खत लिखे जा रहे हैं कि अपनी कोई एक चीज जो कि तुम्हारे पास है वो हमें भेजो, हम उसको एक तबर्रुक के तौर पर रखना चाह रहे हैं, वो लोग जो कि मुसलमान नहीं है। इसके अंदर अब हम वापस आते हैं जहाँ पे हमने बात को शुरू किया था, वो ये था कि कुछ लोग ऐसे हैं हमेशा इंसानियत में रहे हैं कि जो चाहते हैं कि बाकी के लोगों के ऊपर कंट्रोल रखें, और कंट्रोल रखने के साथ वो जो चाहते हैं उस तरह से लोग करें। अना रब्बकुमुल आला, जो फिरौन ने कहा था कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा हूँ, तो खुदाई इंसान के पास आ नहीं सकती जब तक कि उसके पास मातहत और अब्द ना हो। तो ये कंट्रोल का सबसे बेहतरीन चीज ये है कि आप फियर डालने लोगों को, और सबसे बेहतरीन चीज जो कि कंट्रोल लोगों के ऊपर कर सकती है वो ये है कि जब आप उसके वहम को आउट ऑफ कंट्रोल करेंगे तो उसका जो वहम है वो अकल नजरी पर हावी हो जाएगा, बजाय इसके कि अकल नजरी उस पर हावी हो, तो फिर आपको फॉल्स एविडेंसेस अपीयरिंग रियल लगेंगे। जब फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल लगेंगे तो आप एक इंसान को खुदा कह सकते हैं। जब आपको ये सब चीजें लगेंगी तो एक इंसान जो कि ज़ईफ है, जिसको कि अगर एक मच्छर काट जाए तो वो उस मच्छर के काटने से मर सकता है, उसको खुदा कहने लगेंगे, उसकी ताकत से लोग डरने लगेंगे। यहाँ तक इस ये जो बात आई वो ये कि एक तो ये कि एक बीमारी है, दूसरा ये हैवानी चीज है, इंसान की फितरत से जब वो हट जाता है तो वो इन चीजों को रखता है, इसी चीजें के कंट्रोल का एक जरिया है। और जो आखिर में मैं आपको या आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस्लामोफोबिया के अंदर मुसलमानों को मुसलमान से नहीं डरना चाहिए। आप अगर किसी एक मुसलमान के साथ नजरिए में, यानी अगर अकायद के अंदर अगर आप डिफरेंसेस रखते हैं, तो उसको अकड़े नजरिए के साथ, इंटेलेक्ट के साथ बैठकर लॉजिकली, मंतिक के साथ, दलाइल के साथ, कुरान के साथ, हदीस के साथ उसको क्लियर करें, उससे डरने की जो है वो जरूरत नहीं। और इस चीज को जो है वो अपने अमल से, क्योंकि आप अगर कि सोसाइटी के अंदर से ये फोबिया खत्म हो तो आप रैशनल के साथ नहीं उनके साथ बात, यानी रैशनल और मंतिक के साथ बहुत कम लोग हैं जो कि फोबिया को छोड़ेंगे। यानी एक शख्स है वो स्पाइडर से डरता है, आप उसे एक्सप्लेन करें कि भाई आप 250 पाउंड के बंदे हैं, स्पाइडर्स आपके रीजन में कोई जो है वो पॉइजनस स्पाइडर नहीं है, स्पाइडर एक छोटा सा जानवर है, अगर उसने आपको काट भी लिया तो आप मरेंगे नहीं, एक थोड़े सा जो है वो आपके जिस्म पे निशान पड़ देगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। आप उसे अकले नजरे से समझा रहे हैं लेकिन वो समझेगा नहीं जब तक कि वो खुद एक्शन ना ले कि स्पाइडर को जो है वो अपने हाथ में रख ले। जब तक वो खुद अपने फियर्स को फेस नहीं करता वो उस फोबिया को नहीं छोड़ेगा। तो जो इस्लामोफोबिया रख रहा है उसको खुद से जो है वो काम करना है, काम करके जो है वो जब देखेगा कि एक मुसलमान जिसके हवाले से मैं डर रख रहा हूँ, जब एक आपको मैं एक वाक्य बता देता हूँ इंशाल्लाह अगर आपके सवाल हो तो उसके अंदर जो है वो कोशिश भी करेंगे, और ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इस चीज को जो है वो हवा ना दें, ये जो आग लगाई गई है हम उसको हवा ना दें। कुछ हमारे भाई जो है वो गलत किस्म की बैटल्स को जो है चूज कर लेते हैं लड़ने के लिए। मसलन अब आप एयरपोर्ट पर ट्रेवल कर रहे हैं तो जो हमारा एक कौमी लिबास है, एक लिबास है जो कि डिग्निटी नोबिलिटी के हवाले से जिस भी आप कल्चर में रह रहे हैं वो एक्सेप्टेबल है। अब कौमी लिबास अगर आप पहनेंगे और कौमी लिबास के साथ इस्लामोफोबिया अटैच्ड है तो आप उस लिबास को पहन के सिर्फ इस्लामोफोबिया के अंदर जो है उसको उसको इग्नाइट कर रहे हैं, उसको आप कम नहीं कर रहे। एक ऐसी चीज जो कि आप अवॉइड कर सकते हैं जिसके अंदर के कोई, यानी आपने अब शलवार कमीज पहन के कहें कि मैं ट्रैवल करूँ, आपको शलवार कमीज पहन के ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, आप पैंट शर्ट पहन सकते हैं। जब आप जॉब पे जाते हैं पैंट शर्ट पहनते हैं, जब बाहर जाते हैं आप पैंट शर्ट पहनते हैं, और पैंट शर्ट कोई ऐसी चीज नहीं है कि फिका के अंदर वो अलाउड नहीं है। रसूल ने जो लिबास पहना था वो उसके उस कल्चर के अंदर जो लिबास राइज था, जो डिग्निटी का नोबिलिटी का जो लिबास था, रसूल ने वो लिबास पहना। तो अगर हम रसूल की सुन्नत पर अमल करना चाहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना चाहते हैं तो हमें, हम किसी भी जगह पर रह सकते हैं और वो लिबास जो कि डिग्निटी और नोबिलिटी का सिंबल है उसको मुसलमान पहन सकता है, उसके पास ये मुबाह है, चॉइस है। लेकिन अगर ऐसा लिबास है जो कि डिग्निटी और नोबिलिटी के ऑपोजिट है तो फिका जो है उसको कहती है कि आप उस लिबास को ना पहने। तो अगर कोई भाई है वो इस तरह से पहन के बाहर निकलता है और निकल के जो है वो लोग उसे देखते हैं और देख कर जो है वो उनके दिलों के अंदर और ये जो फोबिया जो कि डाल दिया गया वो बढ़ता है, उसके अंदर वो कोई इस्लाम को फायदा नहीं पहुंचा रहा। अब जहां तक हमारी बहनों का ताल्लुक है, बहनों का जो लिबास है जो वो पहनती है जो हिजाब है, हिजाब एक डिवाइन राइट है। ये बहुत फर्क करता है कि मैं शलवार पहन के सर पे टोपी रखूं, ये जो है वो इस्लामिक ड्रेस नहीं, ये आपका कौमी लिबास कह सकते हैं आप, इसको आप लिबास कह सकते हैं। या आप मसलन ये कह सकते हैं कि मसलन थोप किसी ने पहनी है, जुब्बा भी इसे कहते हैं, मसलन जो एक लंबा जो अरब जो ड्रेस पहनते हैं, ये उनका कौमी लिबास है। तो वो ये जो कौमी लिबास है उस कौमी लिबास को पहन के अगर मैं कहूँ कि जी मैं इस्लाम की तबलीग के लिए निकला हूँ और इस लिबास को मैं पहन के जो है वो इस्लाम की तबलीग कर रहा हूँ अमली तौर पर, तो मैं इस्लाम की तबलीग नहीं कर रहा बल्कि मैं अपने कौमी लिबास की तबलीग कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक हमारी बहनों का ताल्लुक है, उनका जो हिजाब है वो एक डिवाइन राइट है, यानी वो खुदा का हक है, वो वाजिब है, उसके अंदर मुबाह नहीं है। नहीं है कि हमारी बहन के पास चॉइस है कि वो हिजाब पहने या ना पहने, ये खुदा का राइट है जो किसे देना है खुदा को। उसके अंदर जो वो हिजाब पहनेगी उसके पास यानी उसके कुछ चीजें मुबाह हैं कि आपने मसलन जो जो इंतखाब करना है ड्रेस वो किस हवाले से होना चाहिए, यानी वो अगर तो वो जो हिजाब की लवाजमात है उसको पूरा करता है तो उनके पास चॉइस है। तो हमें अपनी बैटल्स को जो है या जिस जिन जिन चीजों की तरफ हमारी तवज्जो है या जो चीजें हम समझते हैं कि इस्लाम की अमली तबलीग के अंदर कारामद हो सकती हैं, उनको हमें बहुत ज्यादा केयरफुल होकर आजकल के जमाने में देखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज आगे जाके बढ़ेगी और हमारा फ्यूचर जो वेस्ट के अंदर है वो, क्योंकि ये प्रेजुडिस से भी रिलेटेड है। तो हमें ऑलरेडी अगर देखा जाए तो मुसलमान सबसे ज्यादा ऑप्रेस्ड नेशन है, इस्लाम सबसे ज्यादा अप्रेस्ड रिलीजन है, और सबसे ज्यादा लोगों को जो डराया जा रहा है वो इन दोनों से। मेरी जो दरख्वास्त है वो ये कि अपना इस मामले के अंदर थोड़ी दिक्कत करें, कोशिश करें, अपने अमल से लोगों को दिखाएं कि मुसलमान से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुसलमान कंपैशनेट है, प्यार करता है, मोहब्बत करता है, वो इस उसके साथ कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको वाकया बताते हैं और फिर खत्म। एक शख्स जो है वो उसने मुझे बताया कि एक बंदा जो है वो रॉब करने के लिए वैरायटी स्टोर में आया। उसके पास उसने जो है वो वैरायटी स्टोर के अटेंडेंट से कहा कि भाई तुम मुझे अपना सारा पैसा दे दो, चाकू लेके उसने उसे कहा। तो अटेंडेंट जो था उसके पास गन थी, तो उसने जो है वो अपनी गन को निकाल लिया। अब जो चोर आया था अंदर वैरायटी स्टोर के चाकू लेके, उसने अपने हाथ खड़े कर दिए। तो जो कहता कि यार मुझे कुछ ना को मुझे मसलन ना पुलिस ना बुलाओ, मेरे असल में घर में जो है वो, और ये यहाँ के वेस्ट की बात है, मेरे घर में जो है वो कोई खाना नहीं है, मैं जो है वो जॉब नहीं मेरे पास, और मैं इस तरह से यानी मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं मेरे बच्चे भूखे हैं, तो मुझे मैं मजबूर हो गया कि मैं आऊँ और ये जो है वो इस तरह से काम करूँ। तो वो शख्स जो था उसने जिसने के जो अटेंडेंट था उसने कहा कि देख तू कल आई यानी कल आना तुम और मैं तुम्हें जो है वो जॉब भी दिलाऊंगा, और उसने उसे 40 पाउंड दिए कि ये तुम ले जाओ और अपना जो है वो ग्रोसरीज वगैरह लो, अपने घर के जो भी तुम्हें चीज चाहिए वो जाओ, और तुम कल आना और मैं तुम्हें जो है वो जॉब भी दे दूंगा। तो वो शख्स जो है वो बड़ा हैरान हुआ, वो कहता है कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो। उसने एक तो उसे कहा कि तुम घर चले जाओ, उसे पैसे भी दिए और कहा कि तुम कल आ जाना मैं तुम्हें जॉब भी दिलवा दूंगा। उसने कहा तुम ये काम क्यों कर रहे हो। देखो मैं काम इसलिए कर रहा हूँ कि मैं मुसलमान हूँ और तुम एक जरूरतमंद हो, और तुमने जो है ये जो काम किया तुमने किसी, मैं तुम्हारी इस बात पे यकीन रखता हूँ, ये मेरे एक मुसलमान होने का तकाजा है। उस शख्स ने जो चोरी करने आया था उसने उसी वक्त, और ये सच्चा वाकया है, उसी वक्त उसने कहा कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो एक वो शख्स जिसके के जेहन में हो सकता है कि एक मुसलमान का एक मुख्तलिफ इमेज हो, लेकिन एक मुसलमान ने अपने उस वो जो इमेज उसके जेहन में बनाया गया था उसको तोड़ दिया। इसके अंदर हमारा एक बहुत बड़ा रोल है जो हमें प्ले करना है, उसके हवाले से बात होनी चाहिए। और ये एक बात के अंदर ये मौजू जो है वो कम्प्लीट नहीं हो सकता। इसका एक अखलाक का पहलू है, इसका एक इल्म नफ्स का पहलू है, इसका एक सोशल एस्पेक्ट है, इसका एक अपनी जिम्मेदारियों के हवाले से एस्पेक्ट है, इसका वो बैनल मिलली जो इंटरनेशनल की पॉलिटिक्स है उसके साथ इसका ताल्लुक है, इसका मीडिया के साथ ताल्लुक है, इसका हत्ता हमारे बच्चों की जो हम तरबियत करते हैं उसके साथ ताल्लुक है, और हमारा जो सोशल इंटरेक्शन है नॉन मुस्लिम के साथ उसके साथ ही ताल्लुक है। तो इसके बहुत इसके एंगल्स बहुत ज़्यादा हैं, जो थोड़ा सा वक्त था हमारे पास उसमें कोशिश की। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप वो पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनका जवाब दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलअस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر।
अगर बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत इन्फॉर्मेटिव लेक्चर था। ब्रदर प्लीज़ अगर आप लोगों के कोई सवाल जरूर कीजिएगा। अगर मैं इसी बारे में एक थोड़ा सवाल करना चाहूँगा कि कुछ ब्रादरान का अगर इस कंट्री में ये ख्याल है कि जो दाढ़ी है वो भी इस्लाम फोबिया को इग्नाइट करती है, तो अगर प्लीज़ थोड़ा सा इस पर तशरी कीजिएगा चीज़ की।
जी अगर आप देखें जो अर्जिया था कि अब हमारी जो बात है जो खुदा ने हमारे ऊपर वाजिब कर दिया है, जो हमारे फंडामेंटल्स हैं इस्लाम के, उसके ऊपर हमें अमल करना है। अब हमें अमल उस अंदाज में करना है कि उस अमल के साथ लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो ना कि रिपेल हो। अब हम ये कि दाढ़ी हमें रखनी है, लेकिन दाढ़ी की जो फॉर एग्जाम्पल हद है, यानी अगर 40 कदम से इंसान किसी को देखता है और कहता है कि इसकी दाढ़ी है, तो उतनी लेंथ काफ़ी है। नहीं, अब आप उसके अगर मुस्तहबात में जाते हैं और ज़्यादा बड़ी करते हैं दाढ़ी को, और वो हमारे कुछ भाइयों की जो है वो काफ़ी, वो ना कि सिर्फ मसलन दूसरा बंदा देख के डर जाता है, हो सकता है उनके फैमिली मेम्बर्स भी उनको देख के डर जाए। तो ये कि ये इन चीज़ों के अंदर हमें ख्याल करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि अब फोबिया को हमने ख़त्म करना है तो हम अपने खुदा की वाजिबात को तर्क कर दें। एक ऐसी चीज़ जो कि दूसरे का मर्ज है, यानी जब आप एक मरीज के साथ डील करते हैं तो मरीज के साथ आपको उस तरह से डील करना कि आपको पता है कि ये मरीज है, आप कोशिश करेंगे कि जितना भी उसे आप कंफर्ट दे सकें वो कंफर्ट आपको देनी होगी, लेकिन उसके अंदर अब आप अपने आप को यानी आपकी जो ड्यूटीज हैं उसको आप रद्द नहीं कर सकते। आप ये कहेंगे जी अब शेव करना जो है वो ठीक है, और क्योंकि इस्लामोफोबिया है तो हम शेव करते हैं, तो हमें ये फोबिया आपके शेव करने से ख़त्म नहीं होगा। देखिए बहुत सारे और कल्चर्स हैं उसके अंदर दाढ़ी को एक्सेप्ट किया गया, यानी जो हमारे जो आप कह रहे हैं कि सिख हैं उनके अंदर दाढ़ी उनकी उनकी मजहब का हिस्सा है, तो उनके मजहब के अंदर यानी हर जो सिख है वो दाढ़ी रखे हुए, और वो यानी पगड़ी भी जो है वो एक इस्लामोफोबिया के हवाले से, तो क्योंकि वो पगड़ी भी पहनते हैं, तो बल्कि उन्होंने एहतजाज भी किया था कि हमारी जो पगड़ी का स्टाइल है वो मुख्तलिफ है, जो मुसलमान पगड़ी पहनते हैं वो मुख्तलिफ, क्योंकि लोग उनसे भी डरने लगे थे। तो जहाँ पे अब खुदा की जो वाजिबात हैं जिस जो जो कि हमारे ऊपर वाजिब है, ऑब्लिगेशन है, आप उसको तर्क नहीं कर सकते, आपको वो करना है। लेकिन जहाँ पे आप लोगों के फोबिया खत्म कर सकते हैं वो आपका किरदार है।
किसी को आप सवाल हो तो जरूर
कीजिए। मैं अजहर बात कर रहा हूँ, मेरा एक सवाल था ऐसी चीज से मुतालिक के जो अगर हम देखें रूट्स में, तो जो इस्लामोफोबिया है जो जिस तरीके से इसको पाया गया है, जिस तरह आपने भी कहा कि शुरू में कुछ लोगों ने अपने आप को यानी कि एकदम मुस्लिम डिक्लेयर कर लिया या रिप्रेजेंटेटिव बन गए मुस्लिम्स के, तो उस चीज़ के पीछे जो आज लोगों के अंदर फियर है स्पेशली नॉन मुस्लिम्स के अंदर या बहुत सारे पाकिस्तान जैसे मुल्क में बहुत सारे मुसलमानों के अंदर भी, वो फियर जो है उसके पीछे कुछ रीजंस भी एग्जिस्ट करते हैं, जो कुछ रूथलेस एक्ट्स हैं या जो जिस तरह से लोगों के साथ जो एक्शंस हुए हैं, तो उसके उन एक्शंस को भी हम इग्नोर तो नहीं कर सकते, वो भी एक रियलिटी के तौर पर एग्जिस्ट तो करते हैं, बेशक उन्होंने अपने एक्शंस का नाम इस्लाम रख लिया है, तो इस चीज़ और उसका रिजल्ट अक्सर लोग कुछ लोग इस डायरेक्शन में निकाल लेते हैं कि अच्छा अगर कोई खाली मुसलमान है विद अ टाइटल तो इट्स ओके, लेकिन अगर वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान है देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। तो अब यानी कि जो इस रियलिटी को किस तरह से आप देखते हैं कि जो पीछे एक्शन हैं वो तो रियल एक्शन हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी और यहाँ पे भी। और उसके बाद अब ये लेबल मीडिया के थ्रू उन्होंने एक लेबल डिज़ाइन कर दिया है, और इस्लामोफोबिया डिज़ाइन कर दिया है, जिसके पीछे जो एक्शंस हैं वो रियलिस्टिक एक्शंस हैं, लेकिन टाइटल गलत लग गया है। तो इसके गले का आप क्या कहते हैं?
अगर देखें वो, अब जाहिर है कि अगर दूसरे फोबियाज को भी आप देखें तो हाइट जो है, हाइट से अगर बंदा गिरे तो उसे नुकसान तो पहुंचता है। अगर देखें स्पाइडर जो है वो पॉइजनस है, तो अगर वो काटे तो उससे इंसान मरता है। यानी कुछ चीजों के ये तंग जगहों के अंदर हो सकता है कि मसलन बंदा हो तो वो एलिवेटर के अंदर जाता है, एलिवेटर बिलाकर रोक सकती है। यानी फोबिया के पीछे कोई रैशनल, कोई ना कोई चीज होती तो है। कई ऐसे फोबिया जिनके पीछे कुछ नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो फोबिया ज्यादा जिसके अंदर लोग हैं उसके पीछे कोई रैशनल तो है, लेकिन उस रैशनल को रैशनल के साथ अगर आप टैकल करें और हैंडल करें, तो अगर वो रैशनल के हवाले से बात हो जाए तो फिर वो फोबिया उस बंदे का चला जाना चाहिए। लेकिन जैसे अर्ज किया था कि ये इसका जो इसकी जो रूट है वो इंसान के उस कुव्वत के साथ है जो कि खुदा ने उसको दिया इल्म को हासिल करने के, जो कि वहम है। वो आउट ऑफ कंट्रोल जब हो जाता है तो कोई रैशनल समझ में नहीं आता। अब ये जो कुछ लोगों ने काम किए, क्योंकि आपकी आवाज भी कट रही थी तो मैं सवाल सही तरह से समझ नहीं पाया, अगर जवाब ना आए तो आपने जो सवाल पूछा तो प्लीज मुझे बताइएगा कि कुछ लोगों ने जो हरकतें की और अपने आप को जो मुसलमान कहते थे उनकी हरकतों को देख के कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है भाई, अगर वो तो कुछ मुसलमान थे जिन्होंने किया, आप अगर उस तरह के प्रैक्टिसिंग मुसलमान है तो फिर हमें आपसे डर, लेकिन अगर आप उस तरह के प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं है तो हमें आपसे डर नहीं है। एक ये स्टेज आई थी, लेकिन अब जो स्टेज आई है कि अगर हर मुसलमान, अगर कोई प्रैक्टिसिंग मुसलमान है जो नमाज को फॉर एग्जाम्पल पढ़ता है, वाजिबात को अदा करता है, तो लोग उससे भी डर रहे हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो प्रैक्टिस करेगा इस्लाम के ऊपर वो ना कि सिर्फ एक उसके फंडामेंटल प्रैक्टिस करेगा बल्कि वो सारों करेगा। अगर सारों पे करेगा तो वो फंडामेंटल्स जो कि फॉर एग्जाम्पल कुरान की आयात के हवाले से या अहदीस के हवाले से, तो ये उसके ऊपर भी प्रैक्टिस करेगा, उसके ऊपर प्रैक्टिस करेगा तो हमें इससे वो खतरा है। और उसके अलावा आपकी बात सही भी है कि पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर जो मुसलमान, अब वो किस तरह के मुसलमान है या क्या उनका है वो एक अलहदा बात है, लेकिन उनके एक्शन ने भी जो है इसको फायर दिया है, इसको जो है वो बढ़ाया है, तो इसके अंदर कोई शुबा नहीं है, शक नहीं है। लेकिन अब वो चीजें जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है, जो कि हम फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को चेंज नहीं कर सकते, पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों ने इस्लाम का लिबादा पहन के जो है वो यहाँ के या बाकी दुश्मन या शैतान के कारीगर बने हुए उनके हाथों में खेल रहे हैं, मुसलमानों का जो है वो इनसेंट खून बहा रहे हैं, दूसरे यानी चीजों को भी वो कर रहे हैं, वो कंट्रोल है सच नहीं हमारे पास उनके एक्शन का। लेकिन हम कम से कम अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपने जो एनवायरमेंट है, आपकी मसलन आप जॉब पे जाते हैं, अगर कोई कहीं पे जाए जैसे सब क्वेटा के अंदर हुआ, अगर मेन मीडिया के अंदर आता है तो वो आपसे आपको कहेंगे, या जब ये इराक में कहते तो उस हवाले से, यानी लोग जॉब एनवायरमेंट के अंदर इन बातों को लेकर आते हैं। तो हम ये है कि अगर इस तरह की बात आए तो उस वक्त राइट अवे उस चीज को टैकल करना अपनी जिम्मेदारी ना समझे कि जी लंच पे बात उसने कर दी तो अब जो है वो उसको टैकल करना और कोशिश करनी है कि इसकी इस चीज को जो है वो रद्द किया जाए। नहीं, आप उसे ये कह सकते हैं कि भाई देख, ये जो तूने न्यूज में पढ़ा है, और अगर आप चाहते हो कि इस्लाम के हवाले से क्या क्या इसका ओपिनियन है, तो मेरे पास जो थोड़ा सा नॉलेज है वो हम ये कि काम के बाद जो है वो बैठ के कॉफी पी सकते हैं, या ये है कि आप हमारी मस्जिद में आओ या हमारे हुसैनिया में आओ, या हमारे पास एक जो हमारा रिलीजियस लीडर है या मौलाना है, मैं उससे टाइम ले सकता हूँ और आप उससे जो है वो बैठ के जो है वो बात कर लो। तो ये शायद बेहतर अप्रोच हो, बजाय इसके कि हम उसको भी टैकल करने लग जाते हैं ना, तो वो एक तो टाइम एंड प्लेस नहीं होती, दूसरा वर्क एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो पॉलिटिक्स और रिलीजन को वैसे जनरल पॉलिसी होती है कि डिस्कस ना किया जाए। तो आपकी बात सही है कि पाकिस्तान के अंदर दूसरी जगहों मुसलमान काम कर रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं, और वो फिर अपने आप को कहते हैं कि हम इस्लाम के ऊपर चल रहे हैं, हम प्रैक्टिसिंग मुसलमान मुत्तकी परहेजगार हैं। तो हाँ वो है, यानी कुछ रैशनल उधर से बनता है, लेकिन उस रैशनल को भी रैशनल के साथ अगर टैकल करना है तो उसकी भी एक जगह, एक टाइम और वो अंदाज होना चाहिए ताकि वो खत्म हो। और मुझे नहीं पता अगर आपका सवाल यही था और अगर कोई और इससे आपको कोई सवाल निकल रहा है जवाब से तो आप प्लीज प्लीज बताएं।
नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया ना, बिल्कुल मेरा यही सवाल था, आपने उसको सही सही सवाल का आपने जवाब दिया, बिल्कुल जज़ाकअल्लाह।
जब हम
ब्रदर प्लीज किसी और का कोई सवाल है?
मेरे ख्याल से हमारे भाइयों को जो है वो सॉल्व का फोबिया हो गया है, सॉलों का फोबिया भी होता है, उसके मुझे मेडिकल टर्म नहीं याद आ रही।
ब्रदर प्लीज किसी का अगर और सवाल हो तो कीजिएगा, अगले से इजाजत लेंगे इंशाल्लाह।
खुदा खुदा सारे हमारे जितने सारे मुसलमान जहाँ जहाँ पे भी हैं, खुदा उनके रिस्क को वसी तेरे तौफीकात में इजाफा करे, गुनाहों को माफ़ करे, और हमें तौफीक दे के हम अपनी जिम्मेदारियों को अदा कर सकें खलूस के साथ, और जिस हस्ती का भी इंतज़ार है जो आके इस्लाम को जिस जगह पे उसे होना चाहिए पहुँचा सकती है, इमाम साहब साहब के जरूर जल्द अज जल्द हो, और खुदा हमें उनके गुलामों में से शुमार करे। अगर
बहुत शुक्रिया आपके वक्त का ब्रदर, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे। हम अपने प्रोग्राम का अख्तितम करते हैं दुआ इमाम ज़माना पर, तो ब्रदर डॉक्टर हसन प्लीज तलावत कीजिएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीयकल हुज्जत इब्ने الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. صلوات.
شكرا بعد بہت بہت آپ کو، اور آگے جانا آپ کو بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ ملاقات.